ओम शांति, ओम शांति। आप सभी पिछले तीन दिन से भट्टी कर रहे हैं। चार दिन इस बार स्पेशल भट्टी थी आपकी ना। आप सभी वो आत्माएं हैं जो बाबा ने इनको स्पेशल सिलेक्ट किया है, अपने हम जिन्स बनाया है। ऐसी आत्माएं विश्व के किसी कोने में इकट्ठी, इतनी सारी आत्माएं इकट्ठी नहीं हो, पवित्र आत्माएं इकट्ठी नहीं हो सकती है कि तू इतना पवित्र होते हुए भी पिछले 20 साल में जो मैंने मधुबन में रहते हुए बहनों को देखा है ना, उनकी बीमारियों को देखा है, तकलीफों को देखा है, तो मैं आज से वही चर्चा करूंगा कि कैसे हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे, उसमें दोनों आ गए, ब्रह्मा कुमारी भी आ गए, ब्रह्मा कुमार्स भी आ गए, तो कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे पुराने हिसाब किताब हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब में वो भी चुकतू कर रहे हैं, कि तो चुकतू करते हुए भी कैसे हम उसके बावजूद भी अपने आप को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो विद्या है जिससे हम 21 जन्म स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते, और उसमें से एक जन्म ये वाला है, संगम का जन्म है। अगर हम सही ढंग से अपना जीवन जिए तो हम बीमार हो नहीं सकते। बीमारी होगी भी तो जैसे बाबा कहते हैं, सूले से कांटा और कांटे से भी फूल बन जाती है। हम अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपसे इस बारे में थोड़ी चर्चा शुरू करूं, मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने हैं जो समझते हैं हमारा वेट ज्यादा है, वो हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा, जो समझते हैं हमारा वेट ज्यादा है। तो आधी 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 तो सभा वेट ज्यादा वालों की है ना। चलो बैठ जाए। जो अच्छा, ये एसी ऑन, डक्ट ऑन नहीं की हुई है? ऑन किया, ऑन किया है। अच्छा जी, आपको गर्मी लग रही है? यहां पर गर्मी लग रही है, थोड़ा इसको फास्ट कर दीजिए, थोड़ा सा और डक्ट को थोड़ा फास्ट कर दीजिए। अच्छा, आप इसमें से मुझे बताएं कितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, वो हाथ उठाएं, जो खड़े हो जाएं, जिनको ब्लड प्रेशर है खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। मैं इसी हिसाब से फिर अपनी अपनी ना टॉक को ओरिएंट करूंगा ताकि उस ढंग से जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो खड़े हो जाएं, बैठ जाए। जिनको डायबिटीज है वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े बैठ जाएं। जिनको एसिडिटी बनते ज्यादा वो खड़े हो जाएं, आधी क्लास बैठ जाए। जिनको कमर में दर्द होता है वो खड़े हो जाए, ये भी आधी क्लास बैठ जाए। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो खड़े हो जाए, बैठ जाए। जिनको कभी कभी सिर में दर्द होता है वो खड़े हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, चलिए अभी हम बैठ जाए, सभी बैठ जाए प्लीज, है ना। चले अभी हम 2 मिनट और, कोई मेजर प्रॉब्लम ने मिस किया तो मुझे बताएं। सिर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, एसिडिटी हो गई, हाँ जी, क्या चीज? आज जिनको कोई बीमारी नहीं हो खड़े हो जाएं, 1 2 3 4 5 6 10 15 20 है जिनको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बैठ जाए। चलिए अभी हम इसकी गहराई में जाएंगे कि कैसे हम बाबा के बच्चे, जो कि विश्व में नंबर 1 आत्माएं हैं, वो कैसे खुद को स्वस्थ रखें, खुद को सदा खुश रखें, और कैसे फिर एक रोल मॉडल बनके, सैंपल बनकर के दूसरों को भी हीलिंग दें, दूसरे भी ठीक हो सके, है ना। अगर हम खुद को खुद ठीक कर सकेंगे तो दूसरों को भी ठीक कर सकेंगे, है ना। अगर हम खुद ही बीमार होंगे, हमारे चेहरे से लगेगा हम बीमार हैं, या हम बहुत मोटे हो गए हैं, या हमारी कोई दूसरी बीमारी हमें आ गई है, तो सामने वाले को अगर हम भाषण करें किसी बात पर कि हम राजयोग से स्वस्थ बन सकते हैं, राजयोग से हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रह सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा लगता है नहीं लगता ना। तो राजयोग से हम सदा स्वस्थ सदा खुश कैसे रहें, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्यों हमें बीमारियां आती हैं और कैसे हम उसका अपने आप को उससे मुक्ति पाएं। चलिए दो मिनट के लिए पहले हम मन बुद्धि को एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबके पास मोबाइल्स होंगे, थोड़ी देर के लिए अगले आधे घंटे के लिए 45 मिनट्स के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, है ना। जिसके पास मोबाइल है स्विच ऑफ कर दें, है ना, बीच में मोबाइल नहीं बजना चाहिए। दूसरा, ये तो मोबाइल स्विच ऑफ या खाली मन बुद्धि को स्विच ऑफ कर दें, और कोई बात ना आए, सिर्फ मैं आत्मा हूं, बाबा के बच्चे हैं हम सब, इसी स्थिति में बैठ जाएं ताकि हमारा मन और बुद्धि एकाग्र रहे। क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा वो थोड़ी सी बातें आपको गहराई से समझेंगे तो समझ में आएंगी। मैं सिंपल भाषा में ही बात करूंगा आपसे, मेडिकल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, सिंपल भाषा में ही बात करूंगा, किंतु वो बातें समझने के लिए एकाग्रता चाहिए। थोड़ा सा मन इधर उधर होगा, सेंटर में होगा, कल जाना है परसों जाना है, तो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अभी मन बुद्धि को एकाग्र, एक मिनट के लिए सभी बिल्कुल, मैं चमकता हुआ सितारा, परमात्मा पिता से सातों गुण जो मेरे अंदर आ रहे हैं, मुझे आत्मा में आ रहे हैं, उससे मुझे सारी बॉडी के एक एक कोशिका में जा रहे हैं, इसमें इसी को अनुभव करते हुए बैठे। ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजयोग वो कला है, जीवन जीने की कला है, किंतु अगर सिर्फ हम राजयोग को फॉलो करते हैं तो हमें सिर्फ 1% हेल्थ मिलती है। राजयोग से कितनी हेल्थ मिलती है हमें? 1%, है ना। अगर राजयोग एक है, ये एक राजयोग है, एक जीरो उसके आगे लगा दो तो कितना हो गया? 10। अगर हम डाइट का एक जीरो लगा दें इसके आगे, डाइट का एक जीरो लगा दें, अगर हम हेल्दी डाइट खाते हैं, भोजन ऐसा भोजन खाते हैं जो हमारे शरीर को हीलिंग करता है, फायदा करता है, नुकसान नहीं करता, अगर ऐसा भोजन लेते तो हमारी हेल्थ 10% हो जाती है। अगर एक जीरो और लगा दें तो फिर क्या होगा? एक जीरो एक्सरसाइज की ओर लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। तो एक डाइट, एक जीरो एक्सरसाइज की, तो कितना? 100 हो गया ना। तो अगर हम राजयोगी बच्चे, बाबा के राजयोगी बच्चे, राजऋषि बच्चे, अगर हम ऐसा भोजन खाएं जो हमारे शरीर को हीलिंग करे, दुनिया में लोग खाने के लिए जीते हैं क्योंकि उनके पास खुशी नहीं है, वो खुशी खाने में ढूंढते हैं। आज शाम को बहुत अच्छा खाना मिलेगा, उसके लिए सारा दिन मन में खुश रहते हैं और खाना खाके, डबल खाना खाके भी बीमार होते हैं क्योंकि उनके जीवन में खुशी नहीं है, वो खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं। और हम बच्चे, बाबा के बच्चे, खुशी हमारे अंदर ऑटोमेटिक है, है? जिनको खुशी है वो हाथ उठाएं, दिल से हाथ उठाएं, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ नहीं उठाते, यूं करके, है ना, है ना, दिल से, है ना। तो सच्ची खुशी हमारे पास है क्योंकि हम जानते हैं जीवन का आदि मध्यांत, पूरे कल्प का आदि मध्यांत, आगे क्या होने वाला हम जानते हैं, पीछे क्या हुआ जानते हैं, तो वो हम खुशी खाने में नहीं ढूंढते हैं। आप में से ऐसा कोई है जो खाने में खुशी ढूंढता हो? हाथ उठाएं। जो खाने में खुशी ढूंढता हो कि आज ये खाना मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा कोई है? ये जो मिले वो खा लेते हैं, पापड़ मिले तो अच्छा लगता है, अचार मिले तो अच्छा लगता है, नहीं। तो हमें खाने में खुशी नहीं ढूंढनी है क्योंकि हम लोग अंदर से खुश हैं। खाना तो हम इसलिए खाते हैं, जीवन जीने के लिए खाना खाते हैं, हम खाने के लिए जीते नहीं है, हम जीने के लिए खाते हैं। दुनिया वाले खाने के लिए जीते हैं। मुझे याद है एक बार हार्ट के प्रोग्राम में एक पेशेंट आए थे, तो पेशेंट को जो हार्ट का दिल वाले कहते हैं ना, हार्ट वालों को, दिल वालों को, दिल वाले, हार्ट पेशेंट को दिल वाले कहते हैं, तो वो खाना खाते हैं, तो मैं बीच में जाके राउंड लगाता हूं बीच बीच में, जैसे कैसे खाना खा रहे हैं। तो पेशेंट तो खाना खा रहा था, जो दिल वाला जो था पेशेंट, वो खाना खा रहा था, उसकी वाइफ साथ में बैठी थी, वो भी खाना खा रही थी, पर खाते खाते रो रही थी। मैंने कहा, बहन जी आप क्यों रो रही हैं? कहती, ये तो हार्ट पेशेंट है, इसको तो खाना जरूरी है, मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मैं क्यों खा रही हूं ये खाना, मुझे भी खाना खाना पड़ेगा क्या, मैं इसलिए रो रही हूं। तो मतलब खाने के लिए मतलब उसको अच्छा खाना नहीं लगा, वो तो उसके लिए रो रही थी वो। एक तो ये हमें खाने की इम्पोर्टेंस, मतलब जो है हमें वो खाना खाना है जो हमारे हमारी शरीर के लिए, मन और शरीर तन के लिए दोनों के लिए स्वस्थ, हमें स्वस्थ बनाए। और दूसरा एक्सरसाइज हमारी, मैंने देखा पिछले 20 साल में बहनों को देखा है कि 20 साल से मैं देखते आया हूं कि बहनें हमारी एक्सरसाइज करने में कोई उनका ध्यान नहीं है, जरा भी ध्यान नहीं है। वो मुरली पढ़ना बहुत आवश्यक है, 100% आवश्यक है, मुरली सुनाना 100% आवश्यक है, किंतु वॉकिंग करना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे आप अपने, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, सेंटर की सफाई करते नहीं करते हैं? सुबह शाम करते हैं सेंटर की सफाई, दो बार तो करते हैं ना। तो इस ये जो सेंटर है हमारा, आत्मा का सेंटर तो यही है ना, इसकी सफाई कौन करेगा? ये जो 45 मिनट्स जो मॉर्निंग वॉक है, ये मस्ट है सबके लिए। अब कैसे वॉक करना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसी बात पर कुछ चर्चा आपसे करूंगा कि अगर खाली राजयोग, अगर आप खाली डाइट और दुनिया वाले डाइट और एक्सरसाइज का परहेज करते हैं, दुनिया में लोग जीरो ऑयल डाइट खाते हैं, एक्सरसाइज भी रोज करते हैं, तो भी बीमार रहते हैं। तो अगर खाली जीरो डाइट की और खाली जीरो एक्सरसाइज की, तो उनकी हेल्थ कितनी होगी? 0%, वो हेल्दी नहीं होते। किंतु खाली राजयोग करने वाले भी, उनकी 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 हेल्थ कैसी होगी? 1%। बिना डाइट के और बिना एक्सरसाइज के उनकी हेल्थ है 1%। 1% हेल्दी है वो सिर्फ, 99% बीमार है। जैसे मैंने भी हाथ उठवाया ना, खड़ा किया ना, तो इस सभा में से सिर्फ थोड़ी सी बहनें ने कहा कि हम हेल्दी हैं, कोई बीमारी हमें नहीं। तो हमको आज इस बात में गहराई से चर्चा करें कि हमारी हेल्थ क्यों हमें, क्योंकि हेल्दी शब्द जो है, एक तो इससे पहले भी हेल्दी शब्द पे मैं आऊं, इस बात की गहराई में सभी जानते हैं कि आत्मा है तो शरीर चल रहा है, आत्मा निकल जाए तो शरीर चलेगा, तो आत्मा शरीर को चला रही है नहीं। आत्मा से कुछ ऐसी एनर्जी निकलती है, ऐसे गुण निकलते हैं, ऐसी शक्ति निकलती है, जैसे शरीर की 80,000 बिलियन सेल्स चलती हैं, काम करती हैं। आत्मा निकल के तो सब कुछ बंद हो जाता है। इसलिए कवि ने कविता गाई थी ना, सबने बचपन में पढ़ी भी होगी, गाई भी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये कवि ने कविता क्यों बनाई थी पता है आपको? कवि ने कविता इसलिए बनाई थी कि उसका एक दोस्त होता है बचपन का, तो उसके साथ ही रहता था, वो दोपहर में मर जाता है। शाम के समय कवि बहुत उदास है, बाहर बैठा है, वो सोच रहा है कि मेरा दोस्त कैसे मर गया, ठीक ठाक था, मेरी उम्र का था, कैसे मर गया, मैं ठीक ठाक हूं। फिर उसका ध्यान तारों की तरफ जाता है, फिर उसको याद आता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो एक तारा आसमान में चमका था, उसने ईसा मसीह के रूप में जन्म लिया। तब उसके मन में कविता आती है, ये बात आती है कि एक यहां सितारा है जो जब तक चमकता रहता है सब कुछ चलता रहता है, जब वो निकल जाता है सब कुछ बंद हो जाता है। तब उसने कविता ने लिखी थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कि वो छोटा सितारा कैसे बॉडी को चला रहा है। उसको ज्ञान नहीं था ब्रह्मा कुमारी का, बाबा तो तब तक आया नहीं था, 460 साल पहले की बात है। तो सितारा ही सब कुछ चला रहा है। और हिंदी में जो स्वस्थ है शब्द, स्वस्थ शब्द है स्व माने, हम सभी जानते हैं स्व माने आत्मा स्थामन स्थित, तो स्वस्थ माना ही क्या है? आत्मिक स्थिति में स्थित। सदा स्वस्थ माना क्या है? सदा आत्मिक स्थिति में स्थित। एक्चुअली जो बाबा ने हमारा पहला लेसन क्या है, मैं आत्मा हूं, आखिरी लेसन क्या है हम अशरीरी आत्मा बन जाते हैं, ये करना नहीं पड़ता, मैं आत्मा हूं, हम आत्मा बन जाते हैं। तो ये जो इस ये जो पहला लेसन है, इसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात समाई है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं टीचर्स को, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, फिर मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी में हम गड़बड़ करते हैं, इसी में हमारे सामने गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है, एक इससे पहले मैं और आगे जाऊं, इससे पहले एक शब्द, और मैं हेल्दी शब्द सभी जानते हैं ना, हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना है, हील प्लस डाई, डाई माना योर सेल्फ, अर्थात इस सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? डॉक्टर है, हमारे सेंटर के जो बड़े हैं दादियां हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ आप, सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो आपको हीलिंग कर सकता है वो कौन है, सिर्फ आप। सिर्फ मेरी हेल्थ के लिए मैं जिम्मेवार हूं, आपकी अपनी अपनी हेल्थ के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब भी हम थोड़ी सी जल्दीबाजी करते हैं तो हमारी हीलिंग हो रही है, डैमेज हो रहा है, क्या होता है उस समय, थोड़ा प्रेशर महसूस करते हैं टाइम का, ये काम मुझे अभी करना है, अभी करके ही छोड़ना है, ये हमारे सामने सेवा है, उसके नींद भी खराब कर लेते हैं, मैं देखा बहनें नींद भी खराब कर लेती हैं उसके लिए, तो उसमें हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, थोड़ा सा एंजाइटी रहती है, पता नहीं कैसा प्रोग्राम होगा क्या होगा, तो हम डैमेज कर रहे हैं उसमें, थोड़ा सा मूड ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा सा किसी फीलिंग में आ जाते हैं किसी बात की, तो जितनी देर फीलिंग में आते हैं उतनी देर हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, और जितनी ये नेगेटिव भावनाएं हैं सूक्ष्म में भी, एक बार जब केमिकल निकलते हैं हमारे दिमाग से और बॉडी के डिफरेंट अंगों से, तो ये ना समझे कि उसका हमने एक बार किया और उसका असर खत्म हो गया, नहीं, एक बार प्रेशर ऑफ टाइम हमारे ऊपर आया, जल्दीबाजी थोड़ी सी की, 18 घंटे तक उसका असर खून में रहता है, एक दो घंटा नहीं, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई गोली खा ले, जहर की गोली खा ले तो कितनी देर असर रहेगा उसका, सुबह गोली खाई उसने जहर की तो कितनी देर असर रहेगा, कितनी देर रहेगा, पूरा दिन उसको उल्टी अपने आप लगेंगी ना, तबीयत खराब हो जाएगी ना, ऐसे ही अगर एक बार सुबह जल्दी कर ली किसी काम में, एक बार, मैं देखा बहनों को और कोई उनको अंदर प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी करने की प्रॉब्लम सबके अंदर है, मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, बिना अनुभव के नहीं कह रहा हूं ना, हो आप में से हो सकती है 10-15 बहनें ऐसी हैं जो कभी जल्दी नहीं करती हैं, बहुत शांति से हर काम करती हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में हर एक रहता है, जैसे जल्दी में नहीं रहते, हाथ उठाओ, हैं कुछ 50-100 बहनें कहती हैं ऐसे जल्दी में नहीं रहते, बाकी अधिकतर बहनों को प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, ये काम करना है, ये काम इसी ढंग से होना चाहिए जैसे मैं कहती हूं, ऐसे ही काम होना चाहिए, प्रेशर ऑफ योर ओन थिंकिंग, परफेक्शन, इसी ढंग से काम होना चाहिए, जैसे मैं कहती हूं ऐसे ही काम होना चाहिए, ये ठीक बात है गलत बात है, तो ये जो सोच है ना, इससे भी हमारे अंदर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो 18 घंटे तक हमारा खून उबलता रहता है और हमें डैमेज होता रहता है, ऐसे हार्मोन निकल जाते हैं, और फिर आप कहें कि मेरा योग एकदम, हम एक सेकंड में बाबा के पास चले जाएं, नहीं जा सकते, कोई कहता है मैं एक सेकंड में चला गया तो नहीं, ठीक नहीं कहते, गलत कहते हैं, वो हमारा इमेजिनेशन हो जाता है, यथार्थ योग नहीं कहेंगे उसको, थोड़ी सी एंजाइटी चिंता, थोड़ी चिंता कर ली किसी काम की भी, थोड़ा सा मूड ऑफ कर लिया, एक बार मूड ऑफ किया ना तो कई दिन तक, वैसे तो साइंस तो कहती 5 दिन तक हमारी ऐसे केमिकल निकल आते हैं जो 5 दिन तक खून में रहते ही रहते हैं, हम वो खुशी हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक आ ही नहीं सकती है, हमारा चेहरा मुस्कुराता रहे जैसे देवताओं का चेहरा मुस्कुराता है, हम मुस्कुरा ही नहीं सकते, आर्टिफिशियल हंसी हंस लेंगे, आर्टिफिशियल कोई सामने आएगा तो मुस्कुरा लेंगे, किंतु नेचुरल मुस्कुरा सके वो खत्म हो जाता है, पर ऐसा होता क्यों है, हम ज्ञान में चलते हुए 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, 40 साल भी हो गए किसी किसी को, तो भी आज भी हमारा मूड ऑफ क्यों होता है, आज भी कई बार माथा गर्म क्यों हो जाता है, गुस्सा, मैं गुस्सा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा किंतु गुस्सा क्या कहूं, गुस्सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, किंतु गुस्सा आ जाता है, एटलीस्ट गुस्सा बाहर नहीं आता, कम से कम अंदर से हम गर्म जरूर हो जाते हैं, जो कभी गर्म नहीं होते ऐसा कोई है, एक चलो कोई बात नहीं, मैं कह मुझे हाथ उठवाना है, मैं दादी जी हाथ उठवा सकते, मैं मुझे हाथ उठवाना नहीं चाहिए, पर एज ए भाई, छोटा भाई तो मैं आपसे हाथ नहीं उठवा सकता हूं, किंतु एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूं जरूर, है ना, जो मुझे रोल है। तो ये जो सारी बातें हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान समझने के बाद, क्लासेस कराने के बाद, क्लासेस करने के बाद भी, इतने साल ज्ञान में रहने के बाद भी, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? 11 साल की उम्र तक जो हमारी लाइफ होती है वो पैसिव, उसको हम ओरल फेज कहते हैं लाइफ की, ओरल फेज या पैसिव फेज कहते हैं। जो कुछ हम माता पिता में देखते हैं, अपने माता पिता में, अपने भाई बहनों में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, अपने स्कूल में देखते हैं, टीचर्स में देखते हैं, अपने स्कूल में साथियों में देखते हैं, अपने रिश्तेदारों में देखते हैं, उसको हम जिस चीज से इंप्रेस होते हैं, जिस चीज से हम प्रभावित होते हैं बच्चों में बचपन में, वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप छोटे बच्चे 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, घर में आपके कोई काम, आपकी माताजी ने कोई काम कहा कि काम करना है, कोई काम नहीं कर रहा है, पिताजी ने गुस्सा किया एकदम से, सब काम करना शुरू कर दिया, सब काम जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया, तो छोटे बच्चे के मन में यह बात बैठ जाती, गुस्सा करना अच्छी बात है, जब काम करवाना हो तो गुस्सा करना चाहिए। ये अंदर रिकॉर्ड हो गई। कब रिकॉर्ड हुई? जब आप 3 साल के थे। और ये ज्ञान में 20 साल आने के बाद भी ये मन में रहता है कि जब कोई काम करवाना हो, काम ना निकले तो गुस्सा करना चाहिए, गुस्से के बगैर काम नहीं होता है। इस बात को बुरा नहीं मानते हैं, इसको बाबा कभी कभी मूल संस्कार कहते हैं। अभी पीछे एक मुरली आई थी, आपको याद होगा, ये जो हमारे मूल संस्कार, एक तो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, रहम, दिल और कल्याणकारी, ये तो हमारे आत्मा के संस्कार हैं। किंतु जो मूल संस्कार जो बचपन में हमको पड़ गए, जिसको आज भी जल्दीबाजी, जैसे किसी ने, माताजी ने या किसी ने घर में कहा जल्दी जल्दी करो, सबने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, तो जल्दी करने से काम अच्छा होता है, जल्दी काम होता है, ये अंदर से एक नेचुरल बचपन में 3-4 साल, 5 साल की, 6 साल की उम्र रिकॉर्ड हो चुका है। चिंता जब तक ना करें तब तक काम नहीं होता है, बार बार ना कहें जब तक काम नहीं होता है, ये अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। थोड़ा सा जैसे घर में देखा, थोड़ा सा मूड ऑफ, घर में कोई काम नहीं कर रहा, माताजी ने थोड़ा सा मूड ऑफ करके दिखाया, थोड़ा रोके दिखाया, सबने पिताजी ने भी उनकी हां में हां मिलानी शुरू कर दी। हां तो भाई रोना भी अच्छी बात है ना, कोई काम ना निकले तो रोके दिखाओ, है ना, या मूड ऑफ करके दिखाओ, उदास होके दिखाओ। तो ये 11 साल की उम्र तक हमको रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद हम ज्ञान में आते हैं, या पहले बचपन में ज्ञान में आए तो रिकॉर्ड अंदर हो चुका था। और उसके बाद क्या होता है, भले हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, किंतु जब तक इन बातों को हम एनालाइज नहीं करते हैं, ये चीजें मेरे अंदर हैं, ये देवताओं में होती है क्या, जल्दीबाजी देवताओं में होती है क्या, चिंता होती है थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा मूड ऑफ होता है कभी क्या, कभी देवताएं रोब डालते हैं क्या किसी के ऊपर, रोब डालते हैं कभी, कभी नहीं डालते ना, तो क्यों? ये जो संस्कार है ये हमारे मूल संस्कार है। विकारों की बात छोड़ दो, विकार तो हमारे अंदर नहीं है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो हमारे अंदर नहीं है, सब कुछ बाबा के लिए करते हैं, सेंटर में जो कुछ भी होता है बाबा के लिए सोचते हैं, बाबा के लिए हर कार्य करते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। किंतु ये जो सूक्ष्म रूप में रोब डालना, सूक्ष्म रूप में जल्दी में आना, थोड़ी सी जल्दी में, जब हम जल्दी में तो हमारे विचार बढ़ जाते हैं, तेजी से विचार चलने लगते हैं, चिंता में विचारों की स्पीड बढ़ जाती है, उदासी में विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। और फिर एक और चीज में देखने में आती है मुझे बहनों के अंदर, वह नींद की क्वालिटी अच्छी ना होना, गहरी नींद ना आना, सब में नहीं कहूंगा, कुछ बहनों में नींद गहरी नहीं आती है, तो सुबह फ्रेश नहीं होती, फ्रेश माना सुबह सुबह थकावट महसूस होती है, स्पेशली जो सेंसिटिव नेचर है, एक और जो ये बचपन में आदत पड़ जाती है, सेंसिटिव नेचर, थोड़ी सी बात को जल्दी फील करना, ये भी 11 साल की उम्र तक नेचर पड़ जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इनको जब तक, जैसे सपोज मेरे घर, हमारे घर है, घर में कोई आपके सेंटर में ही मान लीजिए है, सेंटर में कुछ चीज पड़ी हुई है, आप उसको समझते हैं ये तो चीज जरूरी है, पड़ी रहे कोई, हालांकि काम में नहीं आ रही है, आप पड़ी रहे पड़ी रहे पड़ी रहे, जब तक आप उसको खराब नहीं समझेंगे तब तक उसको कमरे से अपने सेंटर से निकालेंगे नहीं, कमरे से निकालेंगे नहीं। और जब आप उसको समझे खराब है बेकार है इसको निकालो, तब उसको निकालेंगे निकाल पाएंगे। तो हमको इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि जल्दी, चिंता, उदासी, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेना, तो इसको हमें छोड़। और भी कोई बातें होंगी आपके दिमाग, अपने अपने मन में सब जानते हैं क्या क्या मेरे अंदर कमी कमजोरी है, और ये बचपन से पड़ी हुई है, इनको हमें अंदर से निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालने का तरीका क्या है इसका निकालने का, 31 मार्च 2010 में बाबा ने बताया था कि सोने से पहले अपने मन बुद्धि को खाली करो। और मैंने देखा है जो भाई बहने, स्पेशली बहने जो मेरे पास आती हैं, इनको नींद नहीं आती है, माइग्रेन का दर्द रहता है, एसिडिटी बहुत होती है। ये जो एसिडिटी का, जैसे मेरे को आदि बहनों ने बताया हमें एसिड बनता है, सबसे बड़ा जो एसिडिटी का कारण है ये जो वाल्व होता है यहां पर एक खाने की नाली और पेट के बीच में, वो वाल्व होता है, और वो वाल्व का कनेक्शन हमारे विचारों की स्पीड से होता है। अगर हम सेंसिटिव नेचर हमारी है, विचार बहुत तेजी से चलते हैं, कोई बात फील करते लेते हैं, तो हमारा वाल्व खराब हो जाता है। जब हम खाना खाते वाल्व खुलता है और नीचे जाने खाना जाने के बाद वाल्व बंद हो जाता है वापस। किंतु जब हम सेंसिटिव बन जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात फील करने लगते हैं, या प्रेशर ऑफ टाइम प्रेशर ऑफ वर्क में अंदर आते हैं, तो हमारा वाल्व विचारों की स्पीड बढ़ जाने से वाल्व खराब हो जाता है, ना समय पर खुलता है ना समय पर बंद होता है, और उसके कारण एसिड ज्यादा निकलता भी है, और एसिड वाल्व फिर एसिड ऊपर चढ़ता है छाती में, उससे फिर यहां जलन होना, गला बार बार सूखना, सिर में भारीपन आना, चक्कर आना, आंखों के नीचे काला काला हो जाना, आंखों में सूजन आ जाना, ये सब प्रॉब्लम उसके कारण देखते हैं। और उसी कारण से क्या होता है, एक और कारण होता है इससे, इससे हमारी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। एसिडिटी ज्यादा होती है ना, तो हमारे ब्लड में जो एसिड की गैसेज हमारे ब्लड में जाती है, पीएच कम होती है, पीएच कम, ब्लड की पीएच कम होने से हड्डियों में से कैल्शियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैं बहुत देखता हूं, हमारी बहनों की हड्डियां बहुत कमजोर हो गए, मतलब इसलिए उनके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, है ना, हड्डियां कमजोर एक बड़ा कारण है। और इसके पीछे मुख्य कारण यह है, मोटापा लेता हूं, मोटापा का कई लोग कहते हैं मोटापा खाने पीने से होता है, जो साइंस ने बताया है मोटापा का कारण है स्ट्रेस, टेंशन। अब आप कहेंगे हम बहनों को टेंशन होती नहीं है, टेंशन नहीं होती ना बहनों को, टेंशन नहीं होती है, मैं पूछूंगा नहीं, टेंशन होती नहीं होती, मैं सिर्फ बता रहा हूं कारण मोटापे का, ठीक है। जब भी हम टेंशन किसे कहते हैं, विचारों की स्पीड जब एक लिमिट से अधिक बढ़ जाती है, जब हमारे विचार एक स्पीड से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल निकलने लगते हैं, हार्मोन्स और ऐसे केमिकल्स बॉडी में निकलते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करने लगते हैं। बेसिकली अधिक विचार का होना ही टेंशन है। कम विचारों को शांति कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, कम विचार। पॉजिटिव विचार कैसे होते, कम होते हैं, नेगेटिव विचार फास्ट होते हैं, ये सभी जानते हैं आप, सभी को स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं, है ना, सेल्फ मैनेजमेंट को कोर्स कराते हैं। तो जब हमारे विचार थोड़ी स्पीड बढ़ती है तो हमें स्ट्रेस होने लगती है, और जब भी हमें स्ट्रेस होती है तो हमारे लिवर में, हमारे बल्कि जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं उसको, उसमें से कॉर्टिसोल निकलना शुरू होता है। मैं मोटापे कारण बता रहा हूं आपको, कॉर्टिसोल जब निकलता है तो हमारे लीवर में ग्लूकोज जमा होता है, ग्लूकोज जमा होता है, उसको इमीडिएटली तो हम खाना नहीं खाते हैं टेंशन के अंदर, कोई स्ट्रेस थोड़ी सी हमारे विचार बढ़े किसी कारण से, विचार क्यों बढ़े, इस बहन ने ऐसा क्यों किया, ये जिज्ञासु ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहा था ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम बड़े हैं हमारी बात क्यों नहीं मानी गई। तो जब हम ऐसी बात सोचते हमारे विचारों की स्पीड बढ़ जाती है, और ब्राह्मणों की एक बात मैं और बता दूं, हमारे इसमें सभी बीकेस बैठे ना, सभी कोई बाहर वाले तो नहीं बैठे हुए ना, सभी टीचर्स बैठी है ना, तो मैं कह सकता हूं ये बात कि हमारे अंदर दुनिया में जो स्ट्रेस करते हैं ना थोड़ी सी, उसका इफेक्ट कम होता है क्योंकि दे आर यूज टू इट, वो लोग उस बात से डेली उससे यूज टू हैं, उनको आदत पड़ी है उसी तरह से रहने की। हम ब्राह्मणों को, हम लोग ज्ञान में आने के बाद ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ये पिछले 20 साल में मैंने यहां रहकर देखा है, वो लोग हार्ड हो जाते हैं, दुनिया वाले हार्ड हो जाते हैं, उनके सामने कुछ भी होता रहे कैसा भी होता रहे वो फील नहीं करते। हम लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एम आई राइट? ये बात मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप अपने अनुभव से कहें, ज्ञान में आने के बाद ज्यादा सेंसिटिव हो गए, पहले ज्यादा सेंसिटिव थे, अभी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं? किसी का दुख थोड़ा सा होता है तो हमें फील होता है, ज्यादा फील होता है ना, अपने अंदर भी कोई बात होती है ज्यादा फील होती है, कोई बात किसी को कुछ कहता है तो हमें ज्यादा अपने अंदर ज्यादा फील होती है, क्योंकि हम सेंसिटिव, हमारे इमोशनल लेवल हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जब हमारे अंदर होता है तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, उसको सेट, वो कॉर्टिसोल क्या करता है, लीवर में जो ग्लूकोज जमा है उससे ग्लूकोज निकालना शुरू कर देता है, और जब ग्लूकोज निकलता है लीवर से तो हमारे पेनक्रिया से इंसुलिन, उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलती है, इंसुलिन निकलती है तो फिर वो ग्लूकोज को कम करता है, साथ में भूख लगती है ज्यादा, इंसुलिन निकलने से भूख ज्यादा लगती है, और फिर हम खाते हैं, और साथ साथ इंसुलिन क्या करती है, बीपी को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इधर इंसुलिन निकल रही है, ग्लूकोज इधर से निकल रहा है, उधर से हम ज्यादा खा रहे हैं। मूड से फूड डिसाइड होता है, अगर मूड हमारा थोड़ा सा भी ऐसा हो जाता है ना तो हमारा ज्यादा मीठा खाने को दिल करता है, तला हुआ खाने को दिल करता है, भले हम कहते हैं हम भोग बना रहे हैं ना, है ना, पर भोग भी अपने टेस्ट का बनाते हैं फिर उसके हिसाब से। कई बार हम कहते हैं नहीं आज हम कुछ स्पेशल बना, मतलब स्पेशल जैसे बनाते हैं जिज्ञासियों के लिए, किंतु उसमें अपने लिए स्पेशल हिसाब से बना लेते हैं अपने मूड के अनुसार भी, तो फिर हम खाते हैं उसको। तो इस तरह से क्या होता है कि बीच में साइकिल बन जाती है रोज, क्योंकि हमारी आदत पड़ी है, हमें स्ट्रेस उस तरह के स्ट्रेस में, वही आसपास भाई बहन है, वही जिज्ञासु होते हैं, तो रोज वही बातें हमारे सामने आती रहती हैं, और रोज हमें उनको कहना पड़ता है, या अंदर से कई बहनें कहती नहीं है किंतु अंदर से फील करती है, और उसके कारण से रोज वही हार्मोन निकलता है, रोज वही लीवर से ग्लूकोज निकलता है, वही हमारा इंसुलिन ज्यादा निकलता है, उससे हमारा जो है वो रोज हमारा, फिर हमें खाने को ज्यादा वो मीठा खाने को दिल करता है, कुछ तलावा खाने को दिल करता है, जानते हुए कि हमें डॉक्टर ने मना किया है, हम पहले मोटे हो चुके हैं फिर भी खाते रहते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा रोज की रोज ब्लड प्रेशर, ये वेट बढ़ता जाता है, और फिर वेट बढ़ने से हमारा धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ना लगता है, और इंसुलिन बढ़ने से, इंसुलिन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और फिर इंसुलिन जब निकल रही है, ग्लूकोज भी निकल रहा है, हम खा भी रहे हैं, तो इंसुलिन निकलते निकलते भी शुगर बढ़ जाती है, तो मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तीनों सगी बहने। तो आगे पीछे, एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते हैं, अगर आज नहीं तो कल आ जाते हैं, और उसके साथ फिर यहां पर जब मोटा पेट हो गया तो एसिड रिफ्लक्स होने लगती है, एसिड ऊपर चढ़ने लगती है, नीचे वाले फेफड़े में सांस एक्सचेंज होता ही नहीं है, सिर्फ आधे फेफड़े में ऑक्सीजन आती है, नीचे वाले फेफड़े में ज्यादा ऑक्सीजन जानी चाहिए वो जाती नहीं है, और कॉर्टिसोल ज्यादा निकलने से एक नुकसान क्या होता है, कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकालता रहता है, हड्डियां खोखली होती जाती हैं, कैल्शियम सीमेंट है ना, कैल्शियम हड्डियों में से निकलता रहता है, हड्डियां खोखली होती है, हड्डियां खोखली होने से हमारे जो कमर के जो मनके होते हैं ना उनके बीच में वाशर होते हैं वो लूज हो जाते हैं मनके, उससे फिर टांगों में दर्द होना शुरू होता है, ये मनके यहां, ये जो हमारी पैरों की हड्डियां, ये आपस में प्रेशर को सह नहीं पाती, टूट जाती है, जगह जगह से भुर जैसे नहीं सीमेंट भुरने लगता है, सीमेंट कम हो दीवार में तो दीवारें झड़ने लगती है ना, सेम वे हमारी हड्डियां झड़ने लगती हैं और फिर जोड़ खराब होने लगता है, ये सारी सारी एक ही कहानी है, तो इसके लिए हमें सूक्ष्मता से, मैं तो समझता हूं अगर हम ये शुरू करें जो मैंने पिछले 20 साल में यहां करा के देखा है, बहनों से करा के देखा है, भाइयों से और दुनियावी जो हमारे पास दुनिया के जो बाकी पेशेंट उनसे भी करा के देखा है, हार्ट के पेशेंट से भी करा के देखा है, कि एक लेटर हम लिखना शुरू करें दोस्तों से पहले। और मैं खुद इसको करता हूं क्योंकि मुझे भी बीच में हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, खुद को हार्ट स्पेशलिस्ट होते हुए मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, है ना। हार्ट की प्रॉब्लम वैसे वाली नहीं जो आर्टरीज ब्लॉक होने वाली नहीं, मेरे पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे फादर को थी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मेरे फादर को थी, मतलब हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई थी मेरे फादर की, तो मुझे भी जीन्स के द्वारा मिली थी वो बीमारी, तो मेरी दीवारें बहुत मोटी हो गई थी और मुझे बहुत एंजाइना होता था, बहुत तकलीफ होती थी। तो कैसे, मतलब मैंने को किताबों में पढ़ के नहीं सीखा है, बाबा से योग में अमृत वेले जो बाबा से रूढ़ करके और बाबा से योग में जो बातें सीखी प्लस जो मुझे प्रेरणाएं आई योग के बाद उन्हीं के आधार पर मैंने सीखा और प्लस जो मेरे को मेडिकल नॉलेज मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल से मिला उसी आधार पर मैंने सीखा, किसी किताबों से नहीं, दुनियावी किताबों से नहीं पढ़ा है। तो ये जो शाम का जो लिखने का लेटर है ना, लेटर लिखने का, मैंने दादियों से भी बातचीत करके देखा, आपने सुना भी होगा, दादियों से भी सुना होगा, दादियां भी सोने से पहले एक लेटर बाबा को रोज लिखती थी और फिर बाबा उसका जवाब, बाबा भी उनको लेटर लिखते थे रोज। ऐसी बात ठीक है ना मीरा बहन, ठीक बात है ना, ऐसे होता था ना। तो सोने से पहले एक लेटर जरूर लिखें, आज सारा दिन में क्या हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ, मन में क्या क्या सूक्ष्म विचार आए, उसने ऐसा बोला मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे को थोड़ा उस समय जल्दी फील हुई, उस समय मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगा, मुझे उस समय मेरा थोड़ा मूड ऑफ, ये बात सुनकर मूड ऑफ हो गया, है ना। जो भी सूक्ष्म भी जो थोड़ी बातें हुई वो सबके सब लिखो और मैं देखूंगा 15 दिन में क्या आपकी आपके अंदर सारा वही जो साइकिल जो ना रिवर्स जो चल रही है विशेष साइकिल, वो परिवर्तन होने शुरू हो जाएगी। एसिड का जो वाल्व है वो रिफ्लेक्स होना बंद हो जाएगा, आपके जो है कमर का दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द होता है सिर दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज शुगर कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, सिर्फ एक सोने से पहले लेटर लिखने से। नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां जो बीमारियां लाइलाज थी, डॉक्टर के पास जाके इलाज करा के थक चुके थे लोग मेरे पास बहुत दूर दूर से आते हैं इलाज कराने के लिए, बीकेज भी आते हैं नॉन बीकेज, वो क्यों आते हैं, मेरे पास जादू की पुड़िया नहीं है, क्योंकि वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको मैं कुछ ज्यादा नहीं बताता हूं, वो सिंपल सिंपल बातें बताता हूं पर वो करते हैं, तो क्योंकि उन बातों को मैं भी करता हूं वो भी करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अगर खाली मैं ना करता हूं दूसरों को कहूं तो नहीं फायदा होगा उनको, मैं खुद करता हूं तो उनको भी फायदा होता है। तो एक ये बाबा का, ये तो बाबा ने मुरली में 31 मार्च की मुरली पढ़ के देख ली दोबारा से 2010 की, बाबा ने होमवर्क दिया था सोने से पहले मन बुद्धि को खाली करके बाबा को सब कुछ बता के अपना पोता मेल देके फिर सो जाओ, आपको नींद भी अच्छी आएगी। और नींद आना बहुत जरूरी है, गहरी नींद आना बहुत जरूरी है। नींद दो तरह की होती है, एक कच्ची नींद एक गहरी नींद। जिसके जो सेंसिटिव नेचर के लोग होते हैं, जल्दीबाजी करने वाले भाई बहन होते हैं, उनको कच्ची नींद आती है। गहरी नींद किसे कहते हैं, जब हमारे मन में 2 से 3 विचार 1 मिनट में चलते हैं उसको गहरी नींद कहते हैं, डेल्टा स्लीप कहते हैं। और कच्ची नींद किसे कहते हैं, जिसमें हमारे 8 से 10 विचार चलते रहते हैं तो उसे कच्ची नींद कहते हैं। कच्ची नींद क्या है, हमारी जल्दी टूट जाती है, लाइट जली होगी हमें आंख नींद नहीं आएगी, कोई थोड़ा सा आवाज करेगा नींद टूट जाएगी, उसे कच्ची नींद कहते हैं। और गहरी नींद जो 2 से 3 विचार वाली नींद होती है, उसमें आपको उठा के कोई यहां से वहां रख दे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो गहरी नींद जो है ना वो जरूरी है, रिलैक्सेशन के लिए गहरी नींद बहुत जरूरी है और वो नींद हमको आनी चाहिए। मैंने काफी लोगों को देखा है, काफी भाई बहनों को देखा है, वो उनको गहरी नींद आती नहीं है। इसलिए वो सारा दिन, और नींद आना अच्छी की नींद आना, नींद नहीं आए अच्छी तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी सारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए सोने से पहले लेटर लिख करके और फिर अगर आप मेडिटेशन करके सोते हैं, जैसे बाबा ने एक बार तो कहा था आधा घंटा मेडिटेशन करके सो, चलो आधा घंटा नहीं 10 मिनट तो करें कम से कम, तो 10 मिनट भी करके सोएं तो हमारा बहुत अच्छा। और एक पूरी चेकिंग कर लें चार्ट, वैसे तो मैं मुझे आपको मुझे कहना चाहिए पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 13 साल से अपना रोज चार्ट लिखता हूं, ये हार्ट के प्रोग्राम में ये चार्ट लिखना सिखाया। वो चार्ट लिखने से क्या होता है, हमारी दिनचर्या पूरी अमृत वेले से रात तक हमारी कैसी दिनचर्या रही, हमें अटेंशन रहती है, इवन खान पान की अटेंशन भी रखते हैं। उसमें मैंने जो चार्ट बनाया उसमें क्या बताया, 4 से 5 मेडिटेशन उसके नंबर बनाए, इतने नंबर अमृत वेले के, उसमें क्वालिटी कितनी, 15 नंबर से कितने नंबर मैं अपने आपको रात को सोने से पहले देता हूं, फिर स्नान करने से मैं मेरी कितनी अटेंशन रही, सोल कॉन्शियस रहा कि नहीं रहा, फिर वॉकिंग करते समय मेरी अटेंशन कितनी, बाबा की याद में वॉकिंग की कि नहीं की, ये अटेंशन अपने ऊपर रखना, फिर मुरली सुनते समय मेरी क्या स्थिति रही, फिर अमृत मुरली के बाद मेरे नाश्ता करते समय मेरी क्या अटेंशन रही, हॉस्पिटल में काम करते हुए कैसी अटेंशन रही, क्या मैंने 11 बजे फ्रूट खाया कि नहीं खाया, फ्रूट नाश्ता बाबा की याद में करने के भी नंबर है, फ्रूट खाने के 11 बजे फ्रूट खाने के भी नंबर है, लंच के पहले हिसाब गोल लेने के भी नंबर है, मतलब हर चीज के नंबर फिक्स कर दिए, हर एक्टिविटी के नंबर फिक्स कर दिए, तो मुझे अटेंशन रहता है कि मेरे नंबर कम हो जाएंगे अगर मैंने ये चीज नहीं की, तो सोमे से मेरे रात को कितने नंबर आएंगे। तो अगर हम ऐसा एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें आत्मिक स्थिति का भी चार्ट बना लें, स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस है ना, कि मैं कितनी देर सोल कॉन्शियस रहता हूं या रहती हूं, तो इसका मैं समझता हूं सबसे पहले तो मन का हम ध्यान रखें। राजयोग द्वारा मन को एकदम दादी जी कहती हैं क्लीन और क्लियर, मन क्लीन और कॉन्शियस क्लियर। दूसरी तरह से हम कहना चाहें तो दिल सच्ची दिल, साफ दिल और मन स्वच्छ। तो इसके ऊपर हम, वो तो आप क्लास करा सकते हैं और अपने अटेंशन देकर के अपने इसको बहुत ठीक ठाक कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बातें आपको भोजन के बारे में बता दूं। भोजन हमारा कैसा, हमारी आंतें कैसी बनी हुई है, हमारी आंतें जो है ना वो उसमें ऐसे ऐसे आरी होती है ना, आरी ऐसे ऐसे दांते जैसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे आंतों में है, पूरी आंत ऐसी है, 24 फुट लंबी आंतें। हमने खाना खाया 3 घंटे पेट में खाना रुकता है, उसके बाद आंतों में धीरे धीरे मूव करता है और नीचे वाली आंत में जाकर खाना एब्जॉर्ब होता है। वहां पे ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं कि अगर हम 50 ग्राम घी खा लिया, हमने बटर खा लिया और बॉडी को 1 ग्राम चाहिए तो 1 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, 49 ग्राम घी निकल जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर हमने 100 मिलीग्राम कैल्शियम खा लिया और बॉडी को 10 मिलीग्राम चाहिए, 10 मिलीग्राम भी एब्जॉर्ब होगा, 90 मिलीग्राम निकल जाएगा। क्योंकि वो रिसेप्टर्स, मतलब बकायदा रिसेप्टर्स जो खरीद, उस रिसेप्टर सेंस डिमांड आती है उस पर कि आप इतना खरीदो। हमारी आंतें सब्जी मंडी की मार्केट जैसे है, बाजार जैसे है ना, उसमें सब कुछ हमने खाया वो पेट में चला गया, उसके पच के नीचे जो टुकड़े पहुंच गया, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक होकर नीचे पहुंच गया। अब उसमें से बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी उसमें से एब्जॉर्ब करती है, वो फिर खून में जाता है, फिर लीवर में आता है, लीवर से फिर लीवर में सफाई होकर उसमें टॉक्सिन जो गंदी चीजें हैं वो बाहर निकल जाती है और फिर हार्ट की तरफ खून आता है वो खाना, और फिर हार्ट से सारी बॉडी में पंप हो जाता है। ये बॉडी का सिस्टम बना हुआ है। जो हमारी आंतें हैं, हमारी जो आंतें हैं उसमें जो मैंने बताया ना, ऐसे से जैसे आरी के दांते होते हैं ऐसे बने होते हैं, उसको हम खराब कर देते हैं। कैसे खराब करते हैं, मैदा की चीजें खा करके, मैदा से बनी हुई चीजें, जितनी टोलियां खाते हैं आप, जितनी टोलियां बनाते हैं किस चीज से बनती हैं, मैदा से बनती है ना अधिकतर, नहीं मैदा से बनती है, तो ये मैदा एकदम जहर है इंसान के लिए, क्योंकि आंतों के दांते खराब कर देती है वो, वहां जाके चिपक जाती है। और फिर अगर आपने 50, वैसे तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी कि 50 ग्राम घी खाएं और बॉडी को 1 ग्राम चाहिए तो 1 ही ग्राम एब्जॉर्ब होगा, किंतु जब आप वो दांते खराब कर देते हैं, उसमें चिपक जाता है, तो अगर आपने 10 ग्राम घी भी खाया, 10 का 10 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाता है। आप सोचिए 10 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया और आपने सिर्फ 10 ग्राम खाया, वो भी तेल खाया, घी नहीं खाया, तो 10 ग्राम भी आपके लिए पॉइजन बन गया। तो अपने ध्यान रखें कि हमारी जो हमारी आंतों में कुछ भी, झाड़ू तो आप घर में तो झाड़ू लगाते हैं किंतु आंतों में झाड़ू लगती है क्या? आंतों में सफाई करते हैं क्या आप लोग? तो इसकी सफाई कौन करेगा? तो कभी भी मैदा से बनी चीजें मत खाओ, कभी भी मत खाओ, जहर है। जैसे टोली खानी है तो टोली फल वाली फल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, टोली नहीं खाओ, ठीक है? मैं सच बता रहा हूं आपको, आप टोली ऐसी बनाओ जो अच्छी टोली हो, अच्छी माना जो लोगों को हेल्दी बने, हेल्दी टोली हो। आटे की चीज बनाओ ना, खाली आटे से बनाओ, मैदा की मत बनाओ। आटे से बनती नहीं बनती टोली? बनती है आटे से, पहले जमाने में तो आटे से ही बनती थी। मैंने देखा सेंटर में, हमारे घर में जो माता जी सेंटर पर जाती थी तो हम देखते थे आटे से ही बनाते, मैदा की चीजें बनती नहीं थी, बहुत कम बनती थी। ये तो अभी मैदा की चीजें बननी शुरू हुई ज्यादा। तो आटे की चीजें बनाओ, मोटे, वो भी मोटी आटे की बनाओ, है ना? और एक अपनी दिनचर्या बना लो कि अपनी आंतों को कैसे साफ रखना है। और दूसरी बात, टेंशन, प्रेशर से भी जब टेंशन होती है किसी बात की तो भी हमारे रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, वो सेंस खत्म हो जाती है उनके एब्जॉर्ब में। तो अगर अपनी आंतों को आप खाना इस तरह सेट कर दो, सुबह का खाना हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए। हाई फाइबर का मतलब जिसमें रेशा ज्यादा हो, जैसे अंकुरित है, अंकुरित मूंग मेथी है ना, जैसे उसमें रेशा बहुत होता है। फली की सब्जी है, फली की सब्जी जैसे ग्वार की बीन्स आती हैं, फ्रेंच बीन्स आती हैं, ये इसमें रेशे जो होते हैं लंबे लंबे रेशे होते हैं, वो झाड़ू का काम करते हैं। तो आंतों में जो भी मैदा फंसा है, जो भी इसको सफाई करते हैं, मोटा मोटी चीजें निकाल देते हैं। तो स्प्राउट, दलिया और बीन्स ये झाड़ू का काम करते हैं आंतों में। और फिर जो फल हम खाते हैं, 11 बजे फल जरूर खाना चाहिए। एक फल में क्या, एक तो फाइबर होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट जितने कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आप कैप्सूल खाते हैं ना, गोली खाते हैं, अगर आप एक एप्पल रोज खा लें 11 बजे, एप्पल नहीं मिले तो नाशपाती खा लें, नाशपाती नहीं मिले तो दो मौसमी खा लें, मौसमी नहीं मिले तो आप क्या अमरूद खा लें, जरूरी नहीं कि एप्पल खाना है, एप्पल बहुत महंगा भी हो सकता है, सीजन का जो फल हो नियम से एक एप्पल खा लें। ये कैप्सूल मत खाएं, कैप्सूल जो विटामिन के कैप्सूल खाते हैं ना, विकासूल खाते हैं और दूसरे कौन से सुप्रानिन खाते हैं, बहुत सारे कैप्सूल खाते हैं, ताकत के कैप्सूल जिसे कहते हैं, वो खाने की बजाय एक फल खा लें 11 बजे। उसमें बहुत सारे नेचुरल फॉर्म में विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। वो खाने, कभी खाने के साथ फल मत खाएं, खाने के 2 घंटे बाद फल खाएं, सुबह 9 बजे खाना पूरा हो गया, 11 बजे फल खा लें। और फिर 1 बजे मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इसबगोल लेना शुरू कर दें लंच के पहले, क्योंकि आज इतने टॉक्सिन्स हैं, हर चीज में टॉक्सिन्स हैं, हर चीज में इंसेक्टिसाइड्स हैं। इंसेक्टिसाइड समझते हैं ना, जो कीड़े मारने की दवाई डालते हैं ना, सब्जियों पे डालते हैं, फलों पे डालते हैं, सब चीजों पे डालते हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए। तो इसलिए इसबगोल आप लंच के पहले खा लें। इसबगोल क्या करता है, और ऊपर से एक गिलास पानी पी लें, और आप इसका असर सिर्फ 15 दिन में देखना आपके बॉडी पे क्या असर होता है। अगर घुटने का दर्द, घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा, कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। तो आप इसबगोल क्या करता है, इसबगोल जब लिया ना आपने, तो मुंह में दो चम्मच इसबगोल डाला, ऊपर से एक गिलास पानी पी लिया, तो वो आंतों में जाके कॉलम बन जाता है उसका। और वो कॉलम क्या करता है, ये सॉल्युबल फाइबर है, जो भी आंतों में जहां भी कुछ गंदगी फंसी होगी, जो मैंने बताया दांते जैसे हैं, उसको निकाल देता है। जैसे आप यूजली घर में क्या करते हैं, एक बार झाड़ू लगाते हैं सेंटर में और फिर पोछा लगाते हैं ना, तो सुबह फली की सब्जी खाना झाड़ू के समान है, और दोपहर में इसबगोल खाना पोछा लगाने के समान, ठीक है ना? और एक बार फिर शाम को भी इसे गोलगर ले लें डिनर के पहले दो चम्मच, तो दो बार पोचा हो गया, ठीक है, सफाई हो गई। और उसके बाद जो आप खाना खाएं, उसके बाद सलाद खाएं, कई लोग कई भाई बहने क्या करते हैं, सलाद खाना खाते रहते बीच में सलाद खाते रहते, नहीं ऐसे नहीं, पहले इस सब को ले लें उसके बाद सलाद एक पूरा प्लेट भर के सलाद खा लें, टमाटर है खीरा ककड़ी जो भी है वो खा लें, उसके बाद फिर रोटी सब्जी खाएं। अगर जगह थोड़ी बचती है ना, पेट तो उससे भर गया काफी सारा, उससे बाकी जो थोड़ी जगह बची उसमें रोटी सब्जी खा लें, तो आपका खाना भी कम खर्च होगा ना, नहीं खाना कम खर्च होगा ना, और फिर वो जो है आराम से जल्दी पेट भी भर जाएगा। और शाम के समय पपीता, जो पपीता है बहुत सस्ता है, पपीता सबसे सस्ता फल है आज, सब फलों में सस्ता फल पपीता है, तो शाम के समय वाटरी फ्रूट्स लेना चाहिए, वाटरी में ज्यादा पानी जिसमें ज्यादा होता है, पपीता खरबूजा तरबूजा, तो ये फल अभी इनमें से कोई फल खा सकते हैं। अगर आप दो बार फल खा लेते हैं तो आपकी हड्डियों की बीमारी, आपको कोई कैल्शियम गोली खाने की आवश्यकता नहीं, कोई विटामिन की गोली खाने की आवश्यकता नहीं, और आप देखें। और फिर शाम के समय मिलता है, जैसे शाम का खाना बहनें बहुत लेट खाती हैं, रात को 9 बजे खाना खाती हैं, 10 बजे सो जाती हैं, और इसलिए क्या होता है, खाना खाया 3 घंटे पेट में खाना रहता है, और फिर जैसे लेटते हैं ना तो ये खाना ऊपर को, ऊपर वाले बाल को टच करता है और बाल खराब हो जाता है, तो सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। ये किताबों में पढ़ा भी होगा, बचपन में आप किताब में पढ़ा होगा, मां बाप ने भी बताया होगा। तो मैं तो कहता हूं कि खाना 6:30 बजे खाना खा लें, उसके बाद सेवा करें, 2 घंटा 2.5 घंटा सेवा करें खूब अच्छे से, सोते समय 1 कप दूध पी लें। अगर आप ऐसा नियम बना लें, करना पड़ेगा आपको, और मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे भाई बहनों ने ऐसा करके देखा है, उनका जीवन बदल गया है। तो 6:30 खाना खा के जल्दी खाना, पहले हम ऐसा करते थे, आप सभी देखो पुरानी जो बहनें जानती होंगी, हमारे घरों में अंधेरा होने से पहले खाना बन जाता था, खाना खा लेते थे और फिर आपस में घर में इकट्ठे बैठा करते थे और फिर सोते समय 1 कप दूध, सबको 1 कप दूध या 1 गिलास दूध पी लिया करते थे, सो जाया करते। उसी पुराने उस पर आ जाइए, अगर हेल्थ चाहिए तो खाना खा के फिर आराम से योग कराओ, कोर्स कराओ, और फिर उसके बाद अपना वो लेटर लिख के दूध पी के सो जाओ बाबा को याद। आई थिंक इतना अगर, और एक 45 मिनट्स वॉक, कम से कम 30 मिनट 35 मिनट वॉक जरूर कर लें। और वो कैसी वॉक करें, वॉकिंग माना ब्रिस्क वॉकिंग, वॉकिंग हमेशा कभी भी अंधेरे में वॉकिंग ना करें। कई बहने सुबह उठे और वॉकिंग करना शुरू, उससे नुकसान होता है। हमेशा वॉकिंग कैसे करनी चाहिए, पहले पेट साफ हो गया, स्नान कर लिया, उसके बाद वॉकिंग करें। कई बहनें कहती है हमारे पास सेंटर पे, हमारे पास जगह नहीं है वॉकिंग करने की, हमारे आसपास गार्डन नहीं है कोई भी। हाँ, मुरली 7 से 8 मुरली होती है, तो 6 बजे 7 बजे वॉकिंग, 6 से 7:45 वॉकिंग करें ना, पर करें वॉकिंग, भले छोटा सा कॉरिडोर उसी में वॉकिंग करें ना, आपका छत है छत पे जाके वॉकिंग करें ना, अगर साथ में कोई पार्क है तो गली में ही वॉकिंग करें ना, ताकि औरों को लगे बहने भी वॉकिंग करती है ना, तो वॉकिंग करना पाप तो नहीं है ना, और फरिश्तों की तरह वॉकिंग करें ना, बाबा की याद में 7 गुणों का अभ्यास करते हुए वॉकिंग करें ना, तो ये वॉकिंग करना मस्ट कर दो। और ऐसे ही शाम के समय भी अगर आपको टाइम मिले तो खाना खाने से पहले, खाने के बाद कभी वॉकिंग ना करें, आधा घंटा 5 से 5:30 या 6 से 6:30 आधा घंटा हो सके तो वो वॉकिंग भी कर लें। अगर आप इतना कर लेंगे तो मुझे आप 15 दिन में ही बताना कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। डाइट का बहुत सिंपल मैंने बताया, सुबह अंकुरित मूंग मेथी और बीन्स की सब्जी, 11 बजे फल, 1 बजे इसबगोल, फिर सलाद खाओ, फिर रोटी सब्जी खाओ, और फिर 4 बजे पपीता थोड़ा, 4:30 चाय पीने की बजाय पपीता खा लो, है ना, और फिर शाम के समय इसबगोले के सब्जी रोटी खा लो। शाम को दाल चावल कड़ी मत खाओ, भले आप गुजराती हो महाराष्ट्र हो कहीं के भी हो, शाम के समय चावल दही और कड़ी मत खाओ, दाल भी नहीं खाओ, सिर्फ रोटी सब्जी खाओ, है जी। खिचड़ी खा सकते हैं किंतु कोशिश करके खाली दाल सब्जी रोटी खाओ तो बहुत अच्छी बात है, खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी की मना नहीं है, पर बाकी दही कढ़ी दाल शाम को मत खाओ जहां तक हो सके। तो अगर आप इतना परहेज करेंगे और साथ में जो मैंने बताया शुरू शुरू में मन की बात जो बताई उस पर ध्यान करेंगे और राजयोग का सही प्रयोग करेंगे तो आपकी हेल्थ, आप देखेंगे जो भी बीमारी आपके अंदर है, और शायद ये तो मैं ये तो पता ही होगा दिमाग के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, ज्ञान। अगर आपको आंख नाक कान गले की बीमारी है, इम्यून सिस्टम खराब है तो उसके लिए पवित्रता, लंग्स के लिए शांति, हार्ट के लिए प्रेम, पेट के लिए खुशी, लीवर के लिए खुशी, हार्मोन्स, थायराइड की बीमारी है या कोई भी आपको डायबिटीज है तो आनंद, हड्डियों में तकलीफ है तो शक्तियां, और किडनी खराब है तो सातों एनर्जी का प्रयोग, बैलेंस। तो अगर आप इसका अभ्यास करेंगे उसी गुण के इसमें टिकेंगे तो आपकी जो भी तकलीफ है शरीर की, मन तो अपने आप ही खुश रहता ही है, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। ओके, और वेट भी आपका बिना ही कुछ डाइट, एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट बहने अभी देखो, फिर आप जो है आपकी जो आप देखेंगे आपका वजन, अगर आप करेंगे आपका वजन हर महीने बिना कुछ और कुछ किए हुए, आपका वजन अगर आप मोटे हैं तो 2 किलो हर महीने कम होगा, अगर आप नॉर्मल वेट के हैं, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा वेट है तो 1 किलो कम होगा, अगर आप नॉर्मल वेट के तो वेट उतना ही रहेगा, और अगर आप अंडर वेट हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं सोचा अंडर वेट को नहीं करना है, अंडर वेट है तो भी आपका वेट बल्कि नॉर्मल हो जाएगा, अगर आप 35 किलो के तो 36 किलो 37 किलो 40 किलो 45 किलो तक हो जाएगा, और जो 60 किलो 70 किलो के हैं वो धीरे धीरे घटते घटते 1-1 किलो 2-2 किलो घटते 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 1 साल में 12-15 किलो कम हो जाएगा, और वो फिर मेंटेन रहेगा आपका वेट, आप करके देखिए। ठीक है, ओम शांति। कोई बात मैंने ऐसे कही हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, पर मैं समझता हूं मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, क्योंकि जो बातें मैंने अनुभव की हैं है ना, वो बातें सबके ऊपर अप्लाई नहीं करती, कुछ बहनों के ऊपर जो मतलब जो हर एक के ऊपर अलग अलग बातें हैं। चलिए 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। आप सबकी वापसी की जर्नी सुखमय हो इसी आशा के साथ, और आपका आगे वाला जीवन स्वस्थ हो, खुशी खुशनुमा रहे, और आप सबके लिए लाइट हाउस माइट हाउस बन के दूसरों को भी हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाए इसी आशा के साथ। ओम शांति। 2 मिनट सभी बाबा को याद करके फिर हम इस क्लास को पूरा करें।